श्यावर रामचंद्र की मोर मुख बंसी वाले की
गवाह की सेवा अपनी शक्ति के अनुसार हम लोगों ने सब नहीं करनी चाहिए। देखो हम लोग एक प्रकार दूध पीवे और सेवा भी करें, एक प्रकार से हमारी कृतघ्नता है कि उनसे हम इतना लाभ उठाने बदले में कुछ भी नहीं करें, तो वास्तव में तो गवाह की सेवा के विषय में हम कहने के अधिकारी भी नहीं। क्यों नहीं अधिकारी हैं कि जैसे आप लोग खूब दूध पीते हम भी दूध पीते और सेवा आप भी नहीं करते, मेरे से भी नहीं बनती माती, तो इस कारण से तो मैं अधिकारी नहीं हूं। तो इसलिए एक प्रकार से कि जो अच्छे जो पुरुष हैं और जो गवाह की सेवा जिन्होंने की है उनको शास्त्र के बीच में अपने शिक्षा मिल रही है, उनको आधार बना करके हम लोगों को सेवा करनी चाहिए। आप लोगों को भी और मुझको भी ख्याल करके देखते हैं पूर्व के जमाने को, तो लाखा गवाह जो है सो नंद उपनंद के थी और 1 लाख करीब गवाह जो है सो विराट के थी, और इस समय के बीच के वहां गवाह बहुत मारी जा रही। दुख की बात क्या है कि जहां गवाह की कत्ल होती है गवर्नमेंट की कहीं कहीं यह कानून है कि 14 वर्ष के नीचे की गवाह नहीं मारी जाए, किंतु यह कानून एक गवर्नमेंट के कागजों में ही है। मैं तो गवर्नमेंट उसको संभालते हैं, जनता के बीच के वहां उत्तेजना न हुए इसलिए यह कानून लोगों को दिखाने के वास्ते बना रहे, काम में जाने के लिए नहीं, क्योंकि काम में जाई नहीं जा रही तो छोटे बादशाह बाची भी मारे जाते हैं, क्योंकि बादशाह बाची छोटे जो मारे जाए उनका जो मुलायम जो चमड़ा होता है वो चमड़ा बढ़िया होता है, और गऊ अपने आम से मर जाती है उनका जो चमड़ा है वो कठोर हो जाता है, उनके जूते भी जो बनते हैं तो खराब जूते बनते हैं जिसकी कीमत 3 रुपया 4 रुपया, और जो जीती हुई गऊ का चमड़ा उतारा जावे या बच्ची और बाछे का चमड़ा उतारा जावे उसका चमड़ा मुलायम होता है, तो ज्यादा जो बढ़िया चमड़ा मुलायम होता है वो तो टोपी के वहां लगता है, घड़ी के वहां लगता है हाथ में, और समझो कि ये बढ़िया बढ़िया कामों में लगता है। ऐसे बूट जिसको जूता कहते हैं बढ़ते हैं जिसका दाम 15 रुपया 20 रुपया ऐसे होता है, उन गवों की किस प्रकार से दशा होती है जो सुनी गई है। और देवसा जी आदि जो गए थे कलकत्ते कसाई खाने में उन्होंने जाकर किस दशा देखी है, उनकी कहीं भी बात मैं कहता हूं मैंने अपने आंखों से देखी नहीं कि गवों के ऊपर गर्म पानी छिड़का जाता है कि जिससे उसका चमड़ा मुलायम हो जाए, और उस पानी छिड़क करके फिर उसे लाठियों से गवों को मारी जाती है कि चमड़ा फूल जाए और एक प्रकार से वो खूब मुलायम हो जाए, उसके बाद में गऊ जीती रहती है उसका चमड़ा उतारा जाता है, उतारती है वो धुलती तरपती रहती है फिर तब तरफ की मर जाती है। कोई कसाई खाना के बीच के बाद समझो कि एक प्रकार से गऊ को मारकर चमड़ा उतारा जाता है ऐसी ही सुनी जाती है, और कोई में ऐसी सुनी जाती है कि प्रथम उसका चमड़ा उतार करके फिर वो मर जाती है उसकी कतर कर दी जाती है और चमड़ा पहला उतार लिया जाता है जिससे वो चमड़ा ज्यादा मुलायम रहे। उस चमड़े के जो जूते बनते हैं 1 नंबर पाप उस 2 ही आदमियों को लगे, उनको 6 पाप के भागी होते हैं, किंतु एक तो जो एक प्रकार से गऊ को मारता है उसको, दूसरे जिस उद्देश्य से मारता है चमड़े के लिए वो चमड़ा जो काम में लाता है उसको, जैसे मांस जो है गऊ का जो गऊ को मारता हत्या करता है उसको समझो गौ हत्या लगती है, और फिर जो गऊ का मांस खाता है उसको गौ हत्या लगती है, तो गऊ का जो मांस है, गऊ का जो खून पीना है, गऊ का जो चमड़े का जूता पहनना है, ये सभी पाप के भागी होती है। मांस के विषय में मनु जी ने ये बात सिखलाई है कि समझो कि हिंसा करने वाला और उसमें सम्मति देने वाला और बिक्री करने वाला और रांधने वाला और खाने वाला, ये सभी समान भाव से पाप के भागी होते हैं। तो यह बात एक प्रकार से सुन करके आप लोगों की यदि रुचि हो तो यह तो आज ही प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हम लोग जो है समझो कि होटलों के बीच में गऊ का मांस रांधा जाता है, तो एक प्रकार से उस होटलों के बीच के वहां समझो कि जाने की सोगन लेनी चाहिए कि हम कभी उस होटलों में नहीं जाएंगे। कई आदमी कहते हैं कि होटलों में तो जाते हैं किंतु मांस नहीं खाते। हम कहते हैं मांस चाहे मैं खाओ किंतु उसका रस जो है दाल में भात में किसी भी प्रकार से वही चमचा है वही हाथ है वही संसार है उसके परमाणु तो आ ही जाते हैं गऊ के। तो ये अपने होटलों के बीच के वहां जाने की शपथ लेने की कभी अरे कोई मामूली बात है क्या? होटलों में नहीं जाने से मर तो नहीं जाएंगे? हम लोग भी तो संसार में जीते हुए फिर रहे हैं, कोई मर नहीं गए। तो यह एक प्रकार से मामूली बात है। तो गंगा जी के ऊपर आकर के हम लोगों को कम से कम या तो मन में प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि किसी होटल के वहां जाकर के भोजन नहीं। यह तो मामूली बात है। कम से कम उत्तम बात तो यह है कि बाजार की कोई भी चीज नहीं खानी, यानी कोई खुमचा है या कोई बाजार की मिठाई है, पान है, चाय है, क्यों बाजार की चीज सभी अपवित्र होती है। उसके वहां घी अपवित्र, चीनी अपवित्र, जल अपवित्र, सभी चीज अपवित्र होती है। किंतु यदि एक प्रकार से इतना त्याग नहीं हो सके तो कम से कम ये त्याग कर लेना चाहिए कि होटलों के बीच के मां समझो कि मुसलमान लोग, खामसामान लोग, ये सब जो होते हैं चमार भी होते हैं, वहां कोई जाति का भेद नहीं, वहां कोई शुद्धि नहीं, वहां कोई एक प्रकार से समझो कि अंडे रहते हैं, मांस रहते हैं, मदरा रहते हैं, जिसका नाम उच्चारण करने से मनुष्य को पाप लगता है। मैं उनका नाम उच्चारण करता हूं तो निषेध के लिए करता हूं, इसलिए शायद पाप नहीं लगे। तो ये तो एक सोगनी लेनी चाहिए कि किसी भी होटल के भी बीच में नहीं जाऊं। दूसरी बात यह कि एक उत्तम बात तो यह है कि चमड़ो काम में जाऊं ही नहीं, क्योंकि वो मालूम नहीं पड़े कि भाई आपने मरी गऊ है, मारी गऊ है, पहला मार कर फिर चमड़ो उतारे है या चमड़ो उतार कर फिर मारी गई है, ये मालूम भी नहीं पड़े। पहला चमड़ो उतारे या बाद में चमड़ो उतारे, बाद में चमड़ो उतारे तो भी पाप है, पहला चमड़ो उतार कर मारे तो और ज्यादा पाप है। तो एक प्रकार से चमड़ो काम में नहीं जाना चाहिए। और यदि कम चमड़ो काम में जाओ अर्थात यह खातरी हुए कि खादी प्रतिष्ठान को चमड़ो है, मारी हुई गऊ को नहीं, अपने मौत से मरी हुई वो चमड़ो है, तो उसके वास्ते हमारा इतना विरोध नहीं कि उसको आप काम में ला सकते। जब आपको पूरी खातरी है कि ये चमड़ो तो मरी हुई का कोई है, हिंसा को नहीं इसमें, किंतु ये तो जरूरी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो गायें चमड़े के लिए, मांस के लिए मारी जाती है, उन्हें गायों का चमड़े का जूता वगैरह एक आम नहीं है। तो गाय का चमड़े का जूता को त्याग कर लू और होटल के मां जाने को त्याग कर कि एक प्रकार से किसी भी होटल के मां जाकर होटल की चीज मंगा कर या होटल में जाकर के या चलती हुई रेल के मां होटल की चीज मंगा करके खाएं। तो ये दो बात के यदि आपके जीते ना तो ये एकदम सदा के वास्ते त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कितने वर्ष जियोगे, आंख में तो मरोगी। तो एक प्रकार से ऐसी कलंकित होकर के संसार से क्यों जावें? यो एक प्रकार से अपने कुल का कलंक लगा करके, जाति का कलंक लगा करके, देश का कलंक लगा करके, जो ये प्रसिद्धि है कि एक प्रकार से थी मारवाड़ देश के लोग यहीं से होते हैं, वे मांस नहीं खाते, वे एक प्रकार से दो हिस्सा नहीं करते, ये प्रसिद्धि है संसार के बीच के वहां। तो हमारे कुल के वहां बहुत से आदमी समझो कि हमारे जाति में, हमारे देश में, हमारे भाइयों में हो गए, जो जाति के कलंक लगाने वाले, कुल के कलंक लगाने वाले, हमारे देश के मारवाड़ देश के कलंक लगाने वाले ऐसे जो पैदा हो गए। तो ऐसी लिए नहीं, ऐसी बात कहने की नहीं करती, तो इसलिए आप यदि सब ठीक इसको समझो तो परमात्मा की जय बोल करके इसको स्वीकृति दो और इसकी प्रतिज्ञा स्वीकार करो। सियावर मोर मुक्त मंत्री। दूसरी बात यह कही जाती है या अपने यथाशक्ति कर सकते कि हम लोग दूध पीते हैं इसलिए हरेक प्रकार से गऊ की अपने को सेवा करनी चाहिए। जहां कहीं एक प्रकार से गऊ को आंदोलन होए तो आज ये आंदोलन संसार में चल रहे है कि विसर्जन गांव बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद दूसरी पार्टी वाले भाई कहते हैं कि यदि एक प्रकार से गांव बिल्कुल बंद हो जाएगी तो ये बूढ़ी जो गाय है ये एक प्रकार से थी अपने घास और को पैदा करने वालों है उसके अनुसार संसार में चारों पैदा करने वालों को भगवान मौजूद है। आज भगवान कहीं मरे नहीं है तो इस वास्ते उनके भरोसे पर रहना चाहिए कि आप गांव की पालन करते हो फिर तो आप एक दिन यो सवाल पैदा करोगे कि जो बूढ़े बूढ़े आदमी हो गए हैं उनको मार डालो क्योंकि निकम्मे हो गए काम तो कुछ करते नहीं एक प्रकार से हुए अन्न खा जाते हैं तो फिर जवान आदमी का अन्न खा जाएंगे तो जवान आदमी मरेंगे। आज कोई जवान आदमी समझो बूढ़ों को अन्न खिलाने से मरे कोई आज तक तो ये सब बेवकूफी है मूर्खता है बेसमझी की बात है। इतने जंगल हमारे हिंदुस्तान के वहां पड़े हैं कि लाखों गवा जंगलों में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर सकती है घास करके जी सकती है। उन गवों को हम जंगलों में छोड़ दें तो भी वो अपने समझो कि पूरी आयु पाकनी मरेगी जंगल में चरेगी। दूसरी बात यह है कि उन गवों को हम खेतों के मार्ग करके चराए तो आप हिसाब लगा करके देख लो कि गऊ का जो पोटा होता है गोबर करती है गोमूत करती है उससे जो खेती की जो वृद्धि होती है गोबर गोमूत से वो खेती वहां अधिक पैदा हो जाती है उसके। तो गऊ जो खाती है चारा चरती है उससे ज्यादा निपज पैदा हो जाती है। समझो कि एक मन खाद दी जाती है तो उससे कई मन अनाज पैदा होता है कई मन घास पैदा होता है एक मन खाद का। तो गऊ यदि समझो कि एक मन पोटा करे और वो एक समझो कि दो मन भी चारों चेहरे तो वास्तु के माँ आपने और भी अधिक चारों और घास और अन्न पैदा हो तो वो जो कुछ खाती है उसके अनुसार वो आपने खाद पैदा कर देती। तीसरी बात यह है कि स्वाभाविक एक प्रकार से समझो कि आपने भगवान है जी का वहां से जो प्रखा करते हैं तो वर्षा के बीच के माँ जितने संसार में प्राणी है पशु पक्षी कीट पतंग भगवान सबके लिए सोच समझ करके वर्षा और अन्न की पैदावार उपज करते हैं। हिसाब लगा करके कुछ न कुछ जितना आवश्यकता होती है उसे अधिक पैदा करते हैं तो फिर हमारे को क्या चिंता है। आज यदि वर्षा न हो रहे तो क्या आप समझो जल से खेती करके जी सकते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने संसार के वहां जो कुछ काम हो रहा है सब भगवान की नजर में हो रहा है। ऐसा सोच करके भगवान पर इतना तो भरोसा करना चाहिए कि जो पैदा करता है वही जिलाता है और वही समय के ऊपर उसको समाप्त करता है तो हम बीच में पड़कर क्यों पंचायती करें। तो हरेक प्रकार से हमको गौ की रक्षा करनी चाहिए। ये तो एक प्रकार से हम लोगों को तो केवल निमित्त बनना है करने वाले तो सब भगवान है हमारा करे होता क्या है। भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सभ्य साचि हे सभ्य साची अर्जुन तू निमित्त मात्र हो जा रीते भी त्वांग न भविष्यन्ति सर्वे ये जितने जो योद्धा है पहले से ही सब मेरे घर के मारे हुए और तुम्हारे बिना तू नहीं भी मारेगा तो भी सब मरेंगे केवल मैं तो तुम्हारे को निमित्त बनाता हूँ। तो भगवान हम लोगों को केवल निमित्त बनाते हैं तो निमित्त बन जाना चाहिए करने वाले तो सब भगवान है तो इतना निमित्त बन जाना चाहिए कि कोई भी सवाल उठे गवां के विषय के माँ तो एक सौ सैतीस में शामिल रहना चाहिए कि गवां अपने हिंदुस्तान में अपने बद नहीं होनी चाहिए। महात्मा जो गांधी जी जो हैं जिस वक्त स्वराज नहीं मिला था उस समय में उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये बात पहले आई थी कि भाई एक प्रकार से हिन्दुस्तान में गवां कटनी बंद होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बीच के मन जो है ये सवाल ठीक है और मेरी क्या इच्छा है और मैं जो स्वराज के लिए चर्चा करता हूँ तो मेरा प्रधान जो सवाल गांव के लिए है तो स्वराज अपने हाथ में आ जावे तो उसके बाद के भी गऊ का विषय उठावेंगे। और मेरी ये है इच्छा कि मैं इसको बंद कर दूंगा। समझ है कि आज मैं जीते तो शायद अपनी बात को याद करके और उस प्रकार से वे करते, किंतु अब ये तो है नहीं, अब किसको कहें। तो इसलिए एक प्रकार से उनको जो आदेश हो और उनको जो उद्देश्य हो कि हिंदुस्तान में स्वराज पाने को, वो स्वराज तो मिल गया, अब उसकी सिद्धि करने के लिए हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिए। तो जहां कहीं महात्मा गांधी की आत्मा होगी तो वो प्रसन्न होगी, बोले वाह, एक प्रकार से जो काम मैं नहीं की वो काम हमारे पिछले से। तो अब आपने इस विषय पर खूब ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश से गाया को कटनो एकदम बंद हो जाए। तो उसके लिए समझो बहुत से उपाय, तो एक तो गौ की वृद्धि को उपाय वो भी करना चाहिए, और एक गवा जो न मारी जाए बेमोत जो गौ मारी जाती है वो बंद हो। जिस समय के बीच के माँ मनुष्य इस प्रकार से बेमोत मारे जाते थे, राक्ष लोग जो है सो मनुष्य को एक प्रकार से मारकर उसके मांस को खा जाते थे और हड्डियों की ढेरी चुन देते थे। उस हड्डियों की ढेरी को देख करके और भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर ही न करू मही भुज उठाय प्रण की, सकल मुनि न के आश्रम जाय जाय सुख भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूजा उठा करके यह प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, और सबके आश्रम में जाकर के उन्होंने सुख दिया था। उस समय में तो समझो ऋषि मुनि है उनको एक प्रकार से राक्षस लोग खा जाया करते थे, और आजकल के मनुष्य राक्षस हो रहे वे गांवों को खा करके हड्डों के ढेरी चारों तरफ लगा रहे। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां समझो कि आपने और ज्यादा यदि अत्याचार हुए तो भगवान अवतार लेते हैं, और नहीं तो संसार के बीच के माँ बहुत से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके माँ वे प्रेरणा करते हैं और वे एक प्रकार से वो काम कर लेते हैं, तो भगवान को आनंद नहीं पड़ता। तो हम लोग इस सब भगवान के भक्त बन करके और बीड़ा उठा करके इस काम को करें तो एक प्रकार से भगवान की मदद पा करके हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान की मदद पा करके अर्जुन के बीच के माँ जो मारे हुए थे उनको भी मार डाला, तो इसी प्रकार से काम तो करने वाले भगवान है, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं, तो इसलिए निमित्त मात्र तो कम से कम बनना ही चाहिए। तो एक तो हर एक भाइयों को अपनी शक्ति के अनुसार कोई अपनी शक्ति हुए तो समझो कि गोचर भूमि छोड़नी चाहिए, कोई भाई की आशक्ति नहीं हो तो घर के माँ गवाह रखनी चाहिए, एक दो गई गौ भी रखनी चाहिए, इतनी भी शक्ति नहीं हुए तो यो ही रखे कि भाई हम गऊ का ही है तो आपने दूध पिएंगे, भैंस का नहीं पिएंगे, इससे भी गऊ को मदद मिलेगी। और जो कुछ भी एक प्रकार से कर सके तो गऊ की सेवा के माँ हर एक प्रकार से मदद करनी चाहिए। गोचर भूमि जो छोड़ना है ये भी गऊ की बड़ी भारी सेवा है, और गऊ को घर में रखना उनकी सेवा करना ये तो एक नंबर है ही। और समझो कि हर एक प्रकार से थी हम लोगों को गऊ की सेवा करनी चाहिए। जैसे समझो कि गौशाला है और वहाँ भी एक प्रकार से अपने शक्ति अनुसार सब भाई लोग मदद करते ही हैं, उससे और विशेष मदद करनी चाहिए कहीं भी गौशाला हुए। आजकल के समय के बीच के वहाँ जो अपने गौ दान दी जाती है वो गौ दान ब्राह्मणों को देनी तो बहुत उत्तम है ही, किंतु यदि कोई ब्राह्मण एक प्रकार से गौ लेकर करके और उसको पालन नहीं कर सके और बिक्री कर दे हुए और किसी भी प्रकार से वह कसाई का हाथ चली जावे तो वो ब्राह्मण भी नरक में जावे और गऊ को देने वाला दाता भी ऐसा नरक में। यदि कसाई के हाथ चली जाए तो समझो यदि ब्राह्मण अपने घर में रख करके उसको पालन करे तो उनकी महिमा शास्त्रों में लिखी है गऊ दान की। ऐसी परिस्थिति के बीच के माँ समझो कि आजकल के समय में नहीं हो तो गऊ अपने देनी हो तो गऊशाला में भेज देवे। अच्छा समझो कि ऋषिकेश में गौशाला है और उससे अपन लोगों ने दूध मिले दोनों समय के बीच के माँ, तो दूध का एक प्रकार से वो जो जमादार अपना लोग ला रहे उसके सुना एक प्रकार से दशाना का दाम लेवे, जमादार का रुपया वही लोग देवे। जो दसा जिक्र आप दाम जमा और आठाना में जो आप दूध मंगावा बैंक अपना जमादार काम करे तो जवाना जमादार के खर्चो लग जाए तो दसाना से अपने ये दूध अब ये मिल रहे। अब सोचने की बात है कि अपन लोग बहुत ही आ गए चार आदमी जंगल में आकर के ठहर गया तब ये दसाना दाम है और नहीं तो और भी कम दाम में दूध मिल सके तो वो जो दूध एक प्रकार से उसका पैसा कम मिले तो गौ के दूध का अधिक दाम से वह भी गऊ की सेवा है। और शेर आप एक प्रकार से आजकल की तो बहुत सी गौशाला तंदर से ही चले प्राय करके यहाँ की ऋषिकेश की गौशाला के भाई लोग तो यही कहते हैं कि भी तुम्हारे सत्संग वाले भाई लोग आते हैं ना उनके ही सेवा से ये चले नहीं तो गौशाला उड़ जाती। मंगला जी बड़े उत्कोटि के एक महात्मा हुए थे और उनके नाम से वो गौशाला है और हम लोग सभी उसके मेंबर हैं तो इसलिए ये रखते हैं कि भाई एक प्रकार से यह गौशाला कायम रहे किसी भी प्रकार से या तो ठीक है। तो साल के मत 3-4 हजार रूपया एक प्रकार से उसको यहाँ से अपने सहायता मिल जा रहे है इस कारण से युवा बसों से चल रही है और उससे अपनी सेवा हो रही है अपने दूध मिल रही है इकट्ठो दूध कहाँ मिले तू एक प्रकार से थी। आप इसी प्रकार से समझो कि कलकत्ते में भाई लोग जो रहते हैं उनको कलकत्ते की पिंजरापोर की सेवा करनी चाहिए और जो जहाँ ही रहे सभी जगह पिंजरापोर कहीं गौशाला है ही तो उसकी सेवा करनी भी गऊ की सेवा है। उसमें हरेक प्रकार से दूध की वृद्धि करनी चाहिए तो हरेक प्रकार से जो ठाली गऊ है बूढ़ी गऊ है उनकी भी सेवा करनी चाहिए। इस विषय में कितने भाई तो कहते हैं कि गौशालाओं के बीच के वहाँ जो ठाली गऊ है उनकी माने बूढ़ी गऊ है निकम्मी गऊ है उनकी सेवा करनी चाहिए उनको रखनी चाहिए। दूध वाली जो गऊ है वो एक बेच देनी चाहिए दूसरों को दे देनी चाहिए। कितने ये कहते हैं कि नहीं एक प्रकार से थी आपने दोनों प्रकार की गऊ की सेवा करनी चाहिए और कितने कहते हैं कि नहीं डायरी फार्म खोलने चाहिए जो दूध वाली गऊ की सेवा करनी चाहिए थालर गऊ जो है ये मरे तो मर जानी चाहिए एक प्रकार से थी। इस प्रकार से थी तीन प्रकार की आवाज आती है। इसमें हमारे को तो ये बात अच्छी मालूम देती है कि भाई सभी गौओं की सेवा करनी चाहे बुढ़ी हो चाहे जवान हो। जवान की सेवा दूध के लिए करनी बुढ़ी की सेवा धर्म के लिए करनी। जैसे अपने घर के माँ जितने मनुष्य होते हैं बूढ़े होते हैं जवान होते हैं तो सबकी सेवा करना कर्तव्य है। बूढ़ों की सेवा चलिए एक प्रकार से उन्होंने हमारी सेवा की एक प्रकार से हमारी सेवा करते करते बूढ़े हो गए। आज हम ये समझे कि ये बूढ़े जल्दी जल्दी मर जावे तो ये हमारी जो भावना है हमारी बुरी नीयत है। हमको तो ये भाव रखना चाहिए कि हमारे बूढ़े माता पिता 100 वर्ष तक जीवे। हमारी भावना से किसी जीवेंगे नहीं। हम इच्छा करेंगे और अधिक वर्ष जीवन तो जीवेंगे नहीं। हम ये इच्छा करेंगे कि कल ही मर जाए तो मरेंगे नहीं। हमारी इच्छा से न तो कोई मरेगा और न कोई जीवेगा। अपनी इच्छा करके के समझो कि अपने अपराध कर लो तो अपने अपराध के बारे में अपना तो बढ़िया से बढ़िया इच्छा रखनी चाहिए कि भाई सब गवां की सेवा होनी चाहिए जीव मात्र की सेवा होनी चाहिए। गवां की तो फिर बात ही क्या है। तो हर एक प्रकार से गवां की सेवा करनी चाहिए। राजा दलीप ने गौ की सेवा कर करके की और समझो कि आपने रघु को प्राप्त किया और जिसके नाम से संसार के वहां रघुवंश प्रसिद्ध हुआ जिसके वंश में भगवान ने अवतार लिया वो राजा दलीप कैसे गवों की सेवा करते हैं। गऊ बैठती है तो बैठता है उड़ती है तो उड़ता है साथ में चलता है गऊ को घास खिलाकर अन्न खाता है गऊ को जल पिलाकर जल पीता है बस गऊ उसके ईश्वर के तुल हो रही है। ईश्वर की जैसे कोई सेवा करे ऐसे उनकी गऊ की सेवा करता है। आखिर में एक दिन ऐसा हुआ कि वन के बीच के वहां एक गऊ के ऊपर सिंह ऐसा आकर के आपने समझो की झपका और गऊ चिल्लाई राजा दौड़कर गया देखे तो सिंह उस पर आक्रमण कर रहा है तो राजा ने उसको सिंह को मारने के वास्ते धनुष बाण उठाए किंतु राजा का धनुष बाण कुछ भी काम नहीं किया वो धनुष बाण चलाया नहीं गया। तो राजा ने सोचा क्या बात है फिर उस सिंह ने कहा कि मैं एक प्रकार से यहाँ एक शिव जी का गण हूँ और एक प्रकार से मुझको कोई नहीं मार सकता है। तो राजा ने कहा कि महाराज आप इस गऊ को नहीं मार करके मुझको मार आपको तो मन सी चाहिए ना तो मुझको आप खा लो गऊ को छोड़ लो। उसने कहा कि हे राजन तुम राजा हो करके और गऊ के बदले में अपने को क्यों दे रहे हो। वशिष्ठ को ऐसी ऐसी और कई गऊ आप दे सकते हो एक गऊ के बदले में और तुम्हारा राजा का शरीर है इसका कितना मूल्य है और गऊ के शरीर का क्या मूल्य है। तो उसने कहा कि आपका कहना ठीक है किंतु मेरा धर्म है मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि गऊ को बचाकर अपने प्राणों को देकर के भी गऊ को बचाना। तो बोले ठीक है, जब ऐसे तो धर्म का पालन करता है तो मैं तुम्हारे ऊपर आता हूँ गऊ को छोड़ करके, तुम चार दान हो जाओ। तो राजा अपने ध्यान में मस्त हो गए, ध्यान में मस्त हो भगवान के ध्यान में। अब एक प्रकार से वो सिंह झपटने की तैयारी हुई, किंतु सिंह झपटता नहीं है। राजा ने आंख खोल कर देखा तो सिंह नहीं है, गांठ है। राजा ने कहा कि राजा दिलीप, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं सिंह बढ़ करके तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, और सिंह सांग यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पर खुश हो गई, तू जो चाहता है जो तेरी इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा लड़का पैदा होगा और बहुत बलवान होगा और नाविक होगा संसार के वहां विख्यात। तो आप ख्याल करना चाहिए कि राजा दिलीप ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी थी गऊ की। इसी प्रकार से बहुत सी कथाएं आती है, उसका मैं विस्तार करूंगा तो इसी व्याख्यान में समय अधिक लग जाएगा और दूसरी बातें मुझको कहनी है, इसलिए इसको मैं यहाँ रोक देता हूँ।
नारायण 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 श्रीमन नारायण रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की।